ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सुनने के लिए तैयार है आया नहीं तो आज एक विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो विषय बड़ा जटिल है समझना और महत्वपूर्ण भी है। भगवत भक्ति में यदि हम भगवान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं या भक्ति में एक ही जगह आकर आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है तो ये विषय उसके लिए नहीं है। तो मनुष्य जीवन मिला है आगे बढ़ने के लिए। किसके लिए मिला है? आगे बढ़ने के लिए। तो आगे कहाँ बढ़ना है व्यक्ति को? इस संसार में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रहा है लेकिन सब लोग नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर? श्रील प्रभुपाद जब इस जगत में थे तो हमेशा जेट विमानों से या फ्लाइट से वो ट्रैवल करते थे पूरे संसार में हमेशा। तो एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी आप ये सारे फ्लाइट आदि का इस्तेमाल करते हो जाने के लिए, आप तो एक साधु हो, प्रभुपाद ने कहा क्यों ना करें हम। प्रभुपाद कहते हैं कि सारा संसार या संसार के लोग बड़े तेजी से नरक में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और वो तेजी से जा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तेजी से। इसलिए जो तेजी से नरक में जा रहे हैं या नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको भी उतनी ही तेजी से पकड़ने के लिए मुझे किस में बैठ के जाना पड़ रहा है? फ्लाइट में बैठ के, विमान में, जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वैसे ही इस संसार में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। इवन बच्चा भी जब बड़ा होने लगता है तो हम उसको भी बोलते हैं आगे बढ़ संसार में, कुछ नाम कमा अपना, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ना, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए और सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए, तो वो आगे बढ़ना उचित है। तो इसलिए जब हम भगवत भक्ति में आते हैं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कोई हमेशा नया भक्त बने रहकर आते नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दिन, महीने, हफ्ते, साल बीत रहे हैं तो भगवत भक्ति में भी रफ्तार से कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं तो माया क्या करती है, हमें फिर पकड़ के खींच लेती है, रोक देती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को मध्यम, तीन प्रकार के भक्त होते हैं ना, मैं कभी उनकी चर्चा करूंगा भविष्य में। कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा होता है मध्यम भक्त, तीसरा होता है उत्तम भक्त। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं मध्यम लेवल में आओ कम से कम, वहां से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। वहां से रफ्तार से कृष्ण की ओर आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये जो विषय है जो मैंने आज सोचा था या सोचा है वो बहुत विशद है, बहुत विस्तार पूर्वक है, लेकिन पता नहीं कितना समय में बोल पाऊंगा, कितना समय अलाउ करेगा। तो ये विषय है, कौन सा विषय है? वैराग्य। कौन सा विषय है? वैराग्य। अभी इस संसार में ये वैराग्य शब्द सुनते ही क्या हो जाते हैं? हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम खुद खड़े होके बाहर चले जाते हैं प्रवचन से, है ना। इस संसार में हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन जब त्याग करने की बात आती है, वैराग्य की बात आती है, तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरे का बेटा साधु बन जाए तो कहेंगे कि देखो कितने पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए, इसने पीढ़ियों को तार दिया, भगवान का भक्त बन गया। लेकिन अपना बेटा भक्त साधु बन जाए तो फिर दिक्कत है। हाँ, ये संसार की स्थिति है। तो ये जो वैराग्य है ये बहुत आवश्यक है हम सबके जीवन में, और ये चारों वर्ण और आश्रमों के लिए है, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चार आश्रम पता है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हाँ, और कौन सा, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम शब्द सब में लगा हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई संन्यास आश्रम, संन्यास के लिए केवल आश्रम शब्द इस्तेमाल हुआ है, नहीं, ये चारों के लिए पीछे कौन सा शब्द लगा है? आश्रम। तो आश्रम का मतलब होता है कि जिसमें रहकर व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत हो जा होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, आप सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के शरणागत होना है। तो चाहे हम आश्रम हो या वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, तो इन सब में ये जो वैराग्य की भावना है ये मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इन सब में ये जो त्याग करने की भावना है वो अस्तित्व रखती है। तो हमें ये जो वैराग्य का भाव है वो हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, और समझना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि असली में वैराग्य क्या है, है ना, त्याग मतलब क्या चीज है। हाँ, लोग तो कई सारी चीजें त्यागते हैं, विरक्त हो जाते हैं, लेकिन उनको असली वैराग्य का कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए वैराग्य लाने से पहले, कोई चीज त्याग करने से पहले, उसे ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वैराग्य, असली वैराग्य क्या है और क्यों आवश्यक है और कैसे हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। तो ये तीन प्रश्न है आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि असली वैराग्य क्या है और ये क्यों हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और कैसे हम इसे ला सकते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति इस शब्द से डरता है, मैंने शुरुआत में ही कहा, बल्कि देखा जाए भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यश्च समाग्रश्च वीर्यश्च यशश्च श्रिया, कि जिनमें ये छह चीजें पूर्ण रूपेण है, ज्ञान है, बल है, सौंदर्य है और धन है, और ये क्या है? वैराग्य। ये छह चीजें जिनमें पूर्ण रूपेण है, हाँ, उनको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण में, कृष्ण का एक ऐश्वर्य है वैराग्य, है कि नहीं? भगवान कितने विरक्त हैं, तो अल्टीमेटली देखा जाए इस संसार में ये जो वैराग्य है, जिसको दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है विरक्ति, हाँ, या इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंसिएशन या डिटैचमेंट, कोई लगाव नहीं, तो ये यदि हम किसी व्यक्ति में देखते हैं तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं। इस संसार में ये छह चीजें हम किस में देखते हैं तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है कि कोई सुंदर है तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, कोई धनवान है, कोई बहुत ज्ञानवान है, हाँ, तो इस प्रकार से हम आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से जब जीव इस संसार में किसी के अंदर बड़ा वैराग्य देखता है, त्याग की भावना, तो उसके प्रति भी हम क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इस संसार में भी देखो ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबको आकर्षित करता है। इवन भारत में जो महात्मा गांधी है, लंदन जाके बैरिस्टर होके आए थे इतना पढ़ लिख के, और यहाँ आकर सर्वसाधारण जीवन यापन किया उन्होंने, तो पूरा भारत का जो जनमानस है उनके ओर आकर्षित हो गया था ना कि, और तो सारे लोग आकर्षित हो गए थे, और जो गांधी कहे वो करने के लिए तैयार थे, जो एक शब्द बोले हजारों लोग तैयार थे कुछ भी करने के लिए। तो क्यों लोग उनमें इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, क्यों उनके वचनों का पालन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गुण था, ये वैराग्य का गुण था, विरक्ति। जो साइसने की कोई भक्ति में लगे हुए लोग थे, सर्वसाधारण लोग, जो उनके अंदर इस गुण को देखकर सब कुछ कर, कुछ भी करने के लिए तैयार थे उनके लिए। बल्कि गांधी को लोग भारत का सबसे बड़ा पद देने के लिए तैयार थे, चाहे उनको पंत प्रधान या राष्ट्रपति, लेकिन महात्मा गांधी ने किसी भी पद को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे ये सब कोई पद आदि नहीं चाहिए, सर्वसाधारण वस्त्र धारण करते थे। तो लोग उनके इस सबसे सरल और विरक्ति पूर्ण जो जीवन है उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, या ये गुण सबको आकृष्ट कर रहा था, और लोग उनको सम्मान दे रहे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इवन भौतिक जगत में भक्ति से संबंध न होते हुए भी ये जो वैराग्य है ये कितना शक्तिशाली है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वैराग्य का भाव स्वीकार किया। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को अपना घर संसार पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ना है, हाँ, ये नहीं। एक चीज सब हम चीजें समझेंगे कि असली वैराग्य क्या है, जिसको हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं, और जो झूठा वैराग्य क्या है, जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता, हाँ, इनमें क्या अंतर है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया था। क्यों संन्यास ग्रहण किया था? केवल चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत विरक्त है या सन्यासी है तो लोग उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, बल्कि उसके सामने बड़े बड़े राजा लोग भी क्या होते हैं, नतमस्तक होते हैं। हम देखते हैं ना हजारों ऐसे उदाहरण है पुराणों में, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी इस वैराग्य की भावना को स्वीकार करते हैं और संन्यास ग्रहण करते हैं। किसके लिए संन्यास ग्रहण करते हैं? दूसरों के लिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार नवद्वीप में एक स्थान में बैठे हुए थे और ऐसे वृंदावन का स्मरण करते हुए वृंदावन की भावना में आविभूत होकर चैतन्य महाप्रभु एक नाम का जप कर रहे थे जोर जोर से। कौन सा नाम था? गोपी 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 गोपी। हाँ, हमने तो सुना है कि हरे कृष्णा मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी कह रहे थे। तो एक विद्यार्थी आता है और चैतन्य महाप्रभु कहता है कि अरे निमाए, ये कलयुग का धर्म तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तुम ये गोपी गोपी क्यों चिल्ला रहे हो, गोपी गोपी का क्यों जप कर रहे हो, उससे क्या प्राप्त होगा? तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कृष्ण है। तो कृष्णा या चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का स्मरण कर रहे थे और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो गोपीगण है। तो ऐसे गोपियों का स्मरण कर रहे थे और उसमें ये विद्यार्थी आकर बाधा बन जाता है और वो कहते हैं निमाय तुम इतने पढ़े लिखे हो, कृष्ण कृष्ण कहो, गोपी गोपी क्यों कह रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है, एक लाठी लेते हैं और उस लड़के को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते भागते आगे बहुत सारे विद्यार्थियों का ग्रुप था, सभा उसमें पहुंच गया, चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो सारे विद्यार्थी आपस में फिर जब इन्होंने पूछा तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए हो, वो कहता है कि ये जो नवद्वीप में जो निमाई है चैतन्य महाप्रभु वो मेरे पीछे मारने के लिए भागे हैं लाठी लेकर। इन सब विद्यार्थियों ने कहा कि ये निमाई है चैतन्य महाप्रभु अपने आप को समझता क्या है, वो क्या राजा है बंगाल का, हम फिर से ऐसी हरकत करेगा तो हम उसको मारेंगे निमाई को। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है तो भगवान है, तो उन्होंने सोचा देखो इस संसार के जीव मेरे प्रति ऐसी दुर्भावना रखेंगे तो उनका कभी भी हित नहीं हो सकता। तो इसलिए महाप्रभु सोचते हैं कि ये लोग मेरा अनादर कर रहे हैं, बल्कि मेरा कोई व्यक्ति अनादर करता है तो उसके लिए नारकीय जीवन और कष्टमय जीवन क्या है निश्चित है, केवल अनादर करने मात्र से। इसलिए महाप्रभु ने सोचा ये लोग मुझे आदर देकर एक बार भी मुझे प्रणाम करेंगे तो ये लोग नारकीय जीवन या संसारिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान को हम एक प्रणाम भी करते हैं ना हमें लगता है क्या झुकना है, हमें भारत में तो कोई झुकता नहीं भगवान के सामने, किसी से धन लेने के लिए व्यक्ति झुकेगा, भगवान के सामने जाके सीधा ऐसे खड़े होकर बस। लेकिन क्या होना चाहिए, हमें भगवान के सामने पूर्ण रूपे में शरणागति का भाव प्रदर्शित करते हुए दंडवत भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा एक प्रणाम भी करता है, कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। क्या कहते हैं, खरीद लेते हैं। आप सोचो कितनी पावरफुल चीज है, एक प्रणाम से भगवान अपने हो जाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा तो ये लोग जो मेरी निंदा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, मुझे आदर करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे और इतना ही काफी है उनको वैकुंठ जाने के लिए भगवान के धाम। इसलिए महाप्रभु ने खुद का सुविधा से युक्त जीवन त्यागा और क्या किया, इन सारे लोगों के हित के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। हाँ, तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा था, इसलिए स्वीकारा था ताकि दूसरे लोगों का हित हो। हाँ, तो इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि ये वैराग्य है क्या। तो हमारे एक आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उन्होंने वैराग्य का एक शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि असली वैराग्य क्या है और झूठा वैराग्य क्या है। इस संसार में दो चीजें हमेशा रहती हैं, है ना, असली दूध और दूसरा कौन सा दूध, गाय का दूध, नकली दूध। एक तो असली गाय का दूध और दूसरा है पाउडर का दूध, निरमा पाउडर डालकर आजकल दूध भी बनाते हैं, दिखने में सफेद लगता है। दोनों का रंग कैसा है, सफेद है। हाँ, लेकिन एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूसरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार से ये वैराग्य है, दिखने में लगता है बड़ा वैराग्य बाबा है ना। तो ये वैराग्य ऐसा ही है, एक है कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता वो वैराग्य, और दूसरा क्या करता है वो वैराग्य, कृष्ण को प्रसन्न करता है। तो ऐसे दो वैराग्य को हमें समझना चाहिए, हाँ, तब हम भक्तिमय जीवन को और अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं कि वैराग्य क्या है, वो लिखते हैं, बल्कि
श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में बताया कि वैराग्य क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि वैराग्य का मतलब है व्यक्ति ये निश्चय करता है कि और अधिक मैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं? वैराग्य। सरल है। और प्रभुपाद कहते हैं वो व्यक्ति ये निश्चित करता है फिर मैं अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए और कार्य नहीं करूंगा तो फिर करेगा क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं सेकंड स्टेप कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अत्यधिक कार्य करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं यह है वैराग्य का सरल परिभाषा। हाँ, क्या है परिभाषा? कि मैं अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए और अधिक कार्य नहीं करूंगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। तो इस संसार में केवल दिन रात हम लगे हुए हैं अपने पांच इंद्रियों की सेवा करने में, गुलाम बने हैं, दास बने हैं। इसलिए गीता में 14वें अध्याय की शुरुआत के श्लोक में भगवान वैराग्य का वर्णन करते हैं। असली वैराग्य क्या है? भगवान कहते हैं गीता में इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? इंद्रियों के अर्थ से विरक्त हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। इंद्रियों के अर्थ क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, जीवा से हम स्वाद लेना चाहते हैं, स्वाद के लिए पागल हो जाते हैं। हाँ, क्या क्या खाते हैं लोग कि जीवा का जो आग्रह भाग है कई बार व्यक्ति इतना खाता है पेट में जगह नहीं होती फिर भी अंदर पूछता रहता है। हमारे भक्त कहते हैं कि पेट कहता है, स्टमक कहता है नो नो, और टंग कहती है यस यस, जीप कहती है आने दो आने दो, पेट कहता है अरे फट रहा हूं, दर्द हो रहा है, और मत डालो और मत डालो। लेकिन व्यक्ति किसका गुलाम हो जाता है? जीवा का। मतलब जीवा का, ये जीवा जो इंद्रिया है उसका अर्थ है स्वाद देना। आंखों का अर्थ क्या है? देखना, कानों से सुनना, और नाक से सूंघना, और त्वचा से क्या करना? स्पर्श करना। तो गीता में कृष्ण कहते हैं ये इंद्रियों के अर्थ हैं, और ये इंद्रियों के अर्थ ऐसे हैं कि जिनको जितना देते रहो वो कभी तृप्त नहीं होते। जीवा को कितना भी डालो स्वादिष्ट, वो जो स्वाद है यहां आता है आग्रह भाग में, अंदर जाता है कुछ पता चलता है स्वाद नहीं। हाँ, तो उस प्रकार से व्यक्ति पागल हो जाता है इन पांच रसों को चखने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, स्पर्श करने के लिए और रसास्वादन करने के लिए, उसका गुलाम बना है। और यही पांच चीजें हमें इस संसार में क्या करती हैं? दिन रात हमसे मेहनत करवाती हैं। इसलिए भगवान कहते आ रहे इन इंद्रियों के जो ये अर्थ है इनसे विरक्ति प्राप्त कर लो। तंग को, क्योंकि अभी भोजन है, भोजन क्यों करना चाहिए हमें बताइए? शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। किसके लिए? शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए। तो फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लोग खा खा कर बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास अधिकतर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि जिभा के जो चोचले, क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं, जिभा के जो, जीभ के जो वेग है स्वाद, उनकी तृप्ति में लगे रहते हैं, अनाप शनाप खाते रहते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रियों के अर्थ है उनसे विरक्त होना मीन्स क्या है? वैराग्य है। ये किसका परिभाषा है? भगवान कृष्ण का। कहा? भगवद गीता में। तो रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं वो और अधिक विस्तार से इसका वर्णन करते हैं कि ये वैराग्य है क्या। वो कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् यतारह उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। वो कहते हैं वैराग्य का मतलब है कि अनासक्तस्य विषयान्। क्लास के बाद में सब चीजें पूछूंगा आपको, आपको सब याद रखना है, ध्यान से सुनना है। बड़ा कठिन लग रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है? हाँ है तो प्रयास करूंगा जितना सरल हो सके, हाँ जितना सरल हो सके बोलने का प्रयास करूंगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि असली वैराग्य क्या है, वो कहते हैं पहली चीज अनासक्तस्य विषया। विषय क्या है? अभी हमने चर्चा की थी, इंद्रियों के अपने विषय हैं, नाक के, नाक का विषय, जीभ का विषय, कान का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, इनके जो विषय है वो कहते हैं अनासक्त, मतलब उनसे कोई आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति का मतलब पता है आपको क्या है? एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति को कहां घूमने जाना था, उसके घर में एक गाय थी, गाय का वो देखभाल करता था, गाय दूध देती थी, अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और बड़ा मधुर और काफी मात्रा में दूध था। तो उसने सोचा अभी तो समर हॉलीडेज आ गए, लोग गए होंगे ना छुट्टियों में जाते घूमने इधर उधर गर्मियों में, तो वैसे इसने सोचा चलो पत्नी को लेके चला जाता हूँ, अभी गाय की सेवा कौन करेगा। तो उसने गाय को अपने पड़ोसी के पास छोड़ा, पड़ोसी को कहा बस मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, चाहे तो मैं पैसे दे दूंगा, गाय की थोड़ी सेवा कर दो, वो सेवा। अभी हम इस संसार में गाय की सेवा तब तक करते जब तक गाय दूध देती है, दूध देना बंद चारा भी नहीं उसको डालते हम, ये कलयुग के लोग हैं। तो अभी उसने कहा कि आप तो सेवा करो, आप चाहे तो पैसे चाहे तो मैं दे दूंगा, दूध भी ले लो, खा लो, जो मर्जी करना है वो करो। वो पड़ोसी ने गाय को रखा, गाय तो बड़ी अच्छी थी, उसकी सेवा भी करता था प्रेम से, उसका दूध निकालता था, लेकिन दूध किसको पिलाता था? कुत्ते को। किसको? घर में कुत्ता भी था, कुत्ते को पिलाता था। जैसे कुछ धनवान लोग हैं और वो घर में बिल्ली रखेंगे, कुत्ता रखेंगे, और क्या रखते हैं, बहुत सारे प्राणियों को रखेंगे, उनको खुद नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, सुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, लेकिन अपने जो बच्चे हैं वो कौन संभालता है? आया, सही शब्द है, आया संभालती है। और ये किसको संभालते हैं? कुत्ते को संभालते हैं, बिल्ली को संभालते हैं, और अपने बच्चों को आया संभालती है, कोई और संभालता है। तो यहाँ कुत्ता था इसके घर में, दूध निकालकर कुत्ते को पिला रहा था, कुत्ता बड़ा रुष्ट पुष्ट हो गया दूध पी पी कर। और कुछ ही दिनों में वो ओरिजिनल जो स्वामी है गाय का, मालिक वापस आ गया और वो कहा कि ठीक है अभी धन्यवाद, आपने गाय की तो बहुत सेवा की, अभी मैं गाय को अपने घर ले जाता हूँ। तो गाय को वो घर ले जा रहा था, जैसे ले जा रहा था बाहर पड़ोस के घर से अपनी गाय, तो कुत्ता जोर जोर से भूक रहा है, क्या हो रहा है, जोर जोर से आवाज निकाल रहा है बाहर, देखा ना कुत्ता पूरा तेजी से बाहर आके, ऐसे लगता है कि कुछ अभी फाइट करने वाला है, जैसे तो ऐसे जोर जोर से भौंक रहा था। तो पत्नी आती है इसकी, पत्नी कहती है कि क्या है ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है। वो कहते हैं पत्नी तो पहले दूध मांग रही थी कि आप दूध मुझे क्यों नहीं देते इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए, कुत्ते को पिलाते हो सारा दूध जब तक गाय घर में थी। वो पति कहता है उसे, जब कुत्ता उसने पूछा कि क्यों भौंक रहा है इतना, पत्नी ने पूछा, पति कहता है तुम भी ऐसी भौंकती यदि तुम दूध पीते, क्योंकि इसको कहते आसक्ति। अभी को कुत्ते को पता चला कल से अभी क्या नहीं मिलने वाला, मुझे दूध नहीं मिलने वाला, ये लगाव प्रेम आसक्ति हो गई थी, किससे? दूध से, इसको कहते आसक्ति। तो पत्नी को कहते हैं तुम भी दूध पीती तो तुम भी ऐसे चिल्लाती कुत्ते के जैसे, बाहर नहीं जाने देती उसको गाय को। तो इसको कहते आसक्त हो जाना। इस संसार में सबसे बड़ा दुख हमें होता है जब हम कृष्ण से अतिरिक्त किसी चीज में अपना मन और हृदय क्या करते हैं, लगा देते हैं, ऐसे फिर व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसे सहन नहीं होता वो कष्ट, किससे आसक्त हो जाता है। इस संसार में देखते ना भौतिक प्रेम जिसको कहते हैं, व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं संसारिक प्रेम के लिए जो 2 कौड़ी का होता है। हाँ, तो वैसे ही इसलिए ये जो आसक्ति है जो हमें बहुत दुख देती है। हाँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं वैराग्य मतलब अनासक्तस्य विषयान्, विषयों के प्रति हमारे हृदय में मन में कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे विषय जो हमने चर्चा किए थे वो कहते अनासक्तस्य विषयान् यतारहम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो वो व्यक्ति विषयों से आसक्त नहीं है लेकिन सारे विषय सारी चीजों को ये जगत की हर वस्तु को वो किसके संबंधित देखता है, कृष्ण के। ये महत्वपूर्ण है वैराग्य को समझना है। पहली चीज समझ में आ गई क्या है, विषयों से कोई आसक्ति नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी चीज है कि वो सारी चीजें किसकी है, कृष्ण की है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, कृष्ण के संबंध में है, कृष्ण की है। हाँ, केवल अनासक्त होना बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट है कि आपको यह समझना कि मैं जो भी ठीक है मैं अटैच नहीं हूं लेकिन हर चीज किसकी है, कृष्ण की है, कृष्ण के संबंध में है। अनासक्तस्य विषयान् यतारहम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे, ये कृष्ण के संबंध में है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, हर चीज की उपयुक्तता को जानता है, उपयोग को जानता है और उसको उचित रूप से भगवान की सेवा में लगाता है। किसकी सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, रूप गोस्वामी कहते निर्बंधे, वो इस संसार से किसी भी चीज से बंधता नहीं है। इसी को ही कहते हैं युक्तम वैराग्यम उच्यते, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य या श्रेष्ठ वैराग्य, असली वैराग्य। फिर से रिपीट करो, किसको रिपीटेशन चाहिए, फिर से रिपीट करता हूं, असली वैराग्य बिल्कुल यहां बिठा दीजिए। हाँ, असली वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य विषयों से अनासक्त। हाँ, और वो व्यक्ति विषयों से अनासक्त होकर भी सारे संसार की चीजों को वस्तुओं को विषयों को भगवान कृष्ण से संबंधित देखता है या जानता है। ये जानकर उस वस्तु को केवल त्यागता नहीं, उसका उपयोग जानता है और उसको किसकी सेवा में लगाता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है। इस कारण से वो व्यक्ति इस संसार में किसी भी चीज से बंधता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य या असली वैराग्य। तो ये है असली वैराग्य। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में जो ऐसे कई कई साधु हैं और वो बहुत चीजें त्याग देते हैं, कृष्ण को भी त्याग देते हैं, प्रॉब्लम ये है वैराग्य का। हाँ, तो ये है असली वैराग्य जिसे बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए हमें। और दूसरा वैराग्य कौन सा है, जिसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। कौन सा वैराग्य, फल्गु या झूठा वैराग्य या निम्न श्रेणी का वैराग्य, दूसरा शब्द कृत्रिम वैराग्य। वो क्या है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते थे। अभी यहां बिल्कुल उससे उल्टा है, तो हमें समझना है कि मैं कौन से कैटेगरी का भक्त हूं, कौन सा वैराग्य मेरे अंदर आजकल, कौन सी भावना घूम रही है। ये दूसरा है झूठा या फल्गु वैराग्य, दिखावे का वैराग्य। ये क्या है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना, उसमें भी हरि से संबंधित आए थे ना सारी वस्तु, कृष्ण से संबंधित देखता है। यहां क्या है, ये वो वैरागी व्यक्ति है जो कृष्ण से संबंधित चीजों को भी क्या समझता है, संसारिक है, निम्न कोटि की है, उनको संसारिक वस्तुएं समझकर उसको क्या करता है, त्याग देता है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या, उसकी बुद्धि सांसारिक होती है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरे संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो, जो मुक्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति हैं वो ये त्याग देते हैं। इसको कहा गया है फल्गु वैराग्य, मतलब वो इस संसार के वस्तुओं को किससे संबंधित नहीं देखता, किससे संबंधित नहीं देखता, भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं देखता, वो केवल त्यागता रहता है। हाँ, लेकिन वो त्याग क्या है उसका, उच्च कोटि का नहीं है, झूठा है वो त्याग, निम्न कोटि का है। इसलिए ऐसा व्यक्ति केवल ये सोचता है अपने भौतिक बुद्धि के कारण या हर चीज को त्यागता है कि ये तो भौतिक है, संसारिक है, और इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, ऐसे झूठे वैरागी लोग जिनको मायावादी कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत सारा क्या है, मिथ्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस संसार में जो भी चीज बनी है वो कृष्ण से संबंधित है और उस वस्तु का एक सही उपयोग है जिसको व्यक्ति को जानना चाहिए और उसको किसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में। श्रील प्रभुपाद हाँ जो बड़ी बड़ी कारें इस्तेमाल करते थे, कहां जाने के लिए, प्रचार के लिए। प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत महाराज, वो कहा करते थे कृष्ण की सेवा के लिए इस संसार की हर वस्तु हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार वो पटना जा गए थे प्रचार के लिए, वहां बहुत सुंदर हाथी नजर आया। अभी आपको हाथी नजर आए तो आप क्या करोगे, सोचो आप देवी के बाहर गए, हाथी जा रहा है तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले हम सेल्फी लेंगे। हाँ, पहले कहां है मेरा मोबाइल, सेल्फी किसके साथ, हाथी के साथ, हाथी मेरे साथ ही। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज, अब देखो भक्तों का देखने का तरीका, भक्ति सिद्धांत महाराज को छोड़ो, और एक आचार्य थे बंसी बदन बंसीदास बाबा जी महाराज, हाँ एक महान भक्त हुए हैं। वो जब जा रहे थे तो वहां एक हाथी आ रहा था और हाथी के ऊपर एक महावत था, और लोग जब जा रहे थे रास्ते में तो हाथी को कोई केला दे रहा था या कोई एक रुपया दे रहा था, तो हाथी क्या कर रहा था, वो केला या एक रुपया खुद अपने अंदर नहीं डाल रहा था, वो ऐसे अपने सुंड से लेता था, ऊपर पहुंचा करता किसके पास, महावत के पास। तो ये जो महान भक्त जा रहे थे बंसीदास बाबा जी महाराज, उन्होंने कहा देखो अरे हाथी अपने स्वामी की सेवा कर रहा है बड़े ईमानदार से, और मुझे देखो मनुष्य का देह प्राप्त करके भी मैं किसकी सेवा नहीं कर रहा हूं, भगवान कृष्ण के जो मेरे असली स्वामी है। इस प्रकार से भक्त देखता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब पटना गए थे तो उन्होंने देखा एक हाथी आ रहा है बड़ा बलशाली, उन्होंने कहा अरे इतना हट्टा कट्टा हाँ पावरफुल हाथी है, यह ऐसा घूम रहा है, इसको कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। एक गाड़ी में डाल के उसको कलकत्ता ले आ गए और किसकी सेवा में लगाया, कृष्ण की सेवा। प्रभु वो कहते थे कि प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें हाथी ऊंट घोड़े के ऊपर बैठकर जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सेवा के लिए हमें पैदल जाना चाहिए, ऐसा कहते थे। ये वैराग्य है वो कहते हैं। वो अपने शिष्यों को कहते थे हाँ आपको डॉक्टर के पास जाना है पैदल चले जाओ, प्रचार के लिए हाथी के ऊपर बैठकर चले जाओ। इसको क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। इसका मतलब है कि संसार की हर चीज हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, उसका उचित उपयोग जानकर, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य है। अभी कुछ लोग वैराग्य का दिखावा करते हैं, अपने शरीर को सुखा सुखा कर मारते हैं, क्या करते शरीर को सुखा डालते, पूरा ऐसा हो जाते हैं, हवा का झोंका आ जाए तो कई किलोमीटर उड़ के चला जाए। बल्कि व्यक्ति को जानना चाहिए कि ये शरीर भागवतम में किसका ये शरीर है? कृष्ण का है। न देह माध्यम सुलभम सुकर सुदुर्लभम, कि ये मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण बड़ी देन है जो भगवान ने हमें दी है, जिसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसकी सेवा में? कृष्ण की। तो फिर इस शरीर का देखभाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर का इस्तेमाल हम दूसरों को आकर्षित करने के लिए करते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। शरीर का इस्तेमाल दूसरों के प्रति हिंसा करने के लिए करते तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस प्रकार से हर एक चीज का उपयोग है जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और जो इस भावना से जीवन यापन करता है वही व्यक्ति क्या है? वास्तव में वैरागी है। और दूसरा व्यक्ति तो केवल वैराग्य का ध्रोम करता है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित वस्तु को देखता नहीं और उसके सही इस्तेमाल को जानता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं असली वैराग्य क्या है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि मानो कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसका जो मनी पर्स है वो गिर जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है आगे, फिर पीछे से कोई एक व्यक्ति आता है, पहला व्यक्ति वो देखते है अरे ये मनी पर्स है, जाने दो किसी का है, मुझे क्या लेना देना, वो अपना आंखें बंद करके निकल जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहते हैं अच्छा आज तो मैंने सुबह सुबह उठ के किसका मुंह देखा होगा, शायद अच्छा दिन जा रहा है, हाँ पैसे मिल रहे हैं मुझे, बहुत बड़ा भाग्य है। मनी पर्स लेता है, पैसे जेब में रखता है, बाकी फेंक देता है। और फिर तीसरा व्यक्ति है जो आके अच्छा ये मनी पर्स है, देखता है किसका आईडी है, किसका एड्रेस है, फोन नंबर है, फोन लगाता है, उसको बोलता है कि आपका मनी पर्स मुझे मिला है, आप ले जाइए या मैं आता हूं आपको देने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? कौन? तीसरा व्यक्ति। जो व्यक्ति क्या करता है? वापस करता है जिसका ये धन है, तो इसको असली वैराग्य कहते हैं। तो उसी प्रकार से इस संसार की हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना और उन चीजों से अनासक्त रहना, ये वास्तव में उच्च वैराग्य का एक लक्षण है। तो हमें केवल योगी नहीं बनना है, योगी से भी श्रेष्ठ है कौन? उपयोगी। कौन? उपयोगी, उपयुक्त होना, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना अपने आप को या सारी वस्तुओं को। तो ये दूसरा वैराग्य बड़ा डेंजर है, फल्गु वैराग्य। प्रभुपाद कहते हैं भारत में एक नदी है, उसका नाम है फल्गु। फल्गु नदी ऊपर से ऐसा लगता है कि पानी है ही नहीं, और जब लगता है कि पानी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो रेत है उसको आप साइड में करोगे, उसमें हाथ डाल दोगे तो अंदर क्या है? पानी है। तो ये फल्गु है, ऊपर से दिखता कुछ है और अंदर कुछ, ऊपर से बड़ा वैरागी है लेकिन हृदय में संसार को भोगने की क्या है? बड़ी भावना है, कूट कूट के भरी है। ऊपर से नो वैरागी है, हम किसी को पैसे को स्पर्श नहीं करते, हम वैरागी हैं, लेकिन जैसे मौका मिलता है वैसे क्या करते हैं? भोग करते हैं संसार का। ये फल्गु है, झूठा है, एक प्रकार का दिखावा है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो फल्गु झूठा वैराग्य है, इसमें तीन और वैराग्यों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं एक वैराग्य है, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरकट मीन्स बंदर, मंकी। हाँ, हम स्कूल में थे तीसरी क्लास में, तो जब मैं पढ़ रहा था तो याद आ रहा था, बंदर का जब याद आता है तो मुझे स्कूल की याद आती है। हाँ, उसमें उस स्कूल में एक चैप्टर था जिसमें वो जो बंदर का कथा था, वो बंदर कभी घर नहीं बनाता था, बड़ा वैरागी, और जैसे बारिश का समय आएगा पूरा भीग जाएगा और वो कहेगा नहीं, अगला जो वो आएगा बारिश आने से पहले घर बनाऊंगा। और इतना वैरागी, प्रभुपाद कहते हैं कि बंदर कपड़े भी नहीं पहनता। नागा बाबा, कौन सा बाबा? नागा बाबा कोई कपड़े नहीं पहनेंगे, हम वैरागी हैं, विरक्त हैं। ऐसे बंदर, प्रभुपाद कहते हैं बंदर भी तो इतना बड़ा विरक्त है, वैरागी है, लेकिन वैराग्य तो है बंधन, लेकिन अपने भौतिक भोग करने के लिए प्रभुपाद कहते तीन डजन बंदरिया रखता है, ऐसा ये वैरागी है बंदर। तो ऐसा वैरागी किसी काम का नहीं है। इसको कौन सा वैरागी कहते हैं? फल्गुण, झूठा वैराग्य। तो एक है मरकट वैराग्य और दूसरा है स्मशान वैराग्य। ये तो आपको परिचित होगा ही। हाँ, इस संसार में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो स्मशान में जाते हैं ना अपने मित्र के साथ, बड़ी ज्ञान की बातें बोलता है। हम वहां जब जाएंगे और फिर किसी का अंत्यक्रिया हो रही हो, वहां जब उस डेड बॉडी को जलाते हैं और ये यहाँ अपने मित्र के गले में गला हाथ में हाथ डाल के कहते हैं, देखो ये संसार क्या हम लेके आए थे और क्या लेके जा रहे हैं, अंतिम अवस्था हमारी ऐसी है, हमें भी एक दिन क्या होना है, जलना ही है, मरना ही है, बस ये संसार सही नहीं है। तो ऐसी बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें बोलते रहता है, लगता है कि बड़ा ज्ञानी है, अभी कुछ होने वाला है, वैराग्य का भाषण देता रहता है अपने मित्र के साथ। इतना वैराग्य आता है वह स्मशान में, आपको अनुभव है, जब हम स्मशान में जाते हैं वो थोड़े समय के लिए बोर लगता है, संसार बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्मशान से बाहर आता है, अपने बड़े कार की चाबी जैसे हाथ डालता है ना पॉकेट में, निकालता है और गाड़ी खोलता है, तो फिर वैराग्य सारा, और फिर ऑन करते उसका अपना म्यूजिक ऑन करता है, वो सारा स्मशान का वैराग्य कहां छोड़ देता है, उधर ही भूल जाता है। तो ये स्मशान वैराग्य है, इसको एक कहते कारण वैराग्य। कारण वैराग्य मतलब जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए ना हमारे, जो उचित नहीं है, बड़ी कष्टप्रद है, पीड़ादायक है, व्यक्ति कहते बहुत हो गया, कल से मंगल आरती जाऊंगा, अभी बहुत वैराग्य आ रहा है, माला अच्छे से करूंगा कल से, हाँ या पढ़ूंगा गीता भागवत, सेवा करूंगा, कि कुछ ना कुछ घटना घटी होती है उसके जीवन में, फिर वो वैराग्य। तो कोई कारण हो जाए हमारे जीवन में, घटना घट जाए, तो हमारे अंदर क्या आता है, वैराग्य का भाव। ये भाव भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, असली भाव का अभाव हो जाता है। हाँ, तो ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं है, ऐसा जो स्मशान वैराग्य है। तो और एक वैराग्य है जिसको कहते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव मीन्स जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत कष्ट होता है। भागवत में वर्णन आता है कि इतना कष्ट होता है, अब वो बहुत चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है, वो कहती है नहीं अगली बार कोई बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, लेकिन फिर से वो दूसरे बच्चे की तैयारी करती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रसव वैराग्य शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे वैराग्य क्या है, ढोंग है, झूठे हैं, कृत्रिम हैं, केवल दिखावेबाजी हैं। क्या है, दिखावेबाजी हैं। लेकिन हमें जो श्रेष्ठ वैराग्य है, असली वैराग्य, उसको स्वीकारना चाहिए। और वो असली वैराग्य क्या है वास्तव में, जब प्रहलाद स्कूल से वापस आया तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा बहुत दिनों के बाद स्कूल से वापस आए हो, मुझे बताओ क्या सीख के आए हो। तो प्रहलाद कहता है कि मैं एक सीख के आया हूं। क्या, वो कहते हैं हितवात्म पातम ग्रहम अंध कूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। वो कहते हैं कि हे मेरे पिता, मैंने सीखा है कि अभी ये जो ग्रह मेधी जीवन है, अंधे कुएं के समान है, इसको छोड़ दो और वन में चले जाओ। वन में क्यों जाओ, कोई कहेगा कि प्रभुपाद प्रवचन में कहते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी वन में भी चले जाए तो वो वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य क्या है, वहां कहते प्रहलाद हरिम आश्रयेत। वन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वन में पशु भी है। तो कोई कहे कि मैं वन में गया, वन में निवास कर रहा हूं, मैं वैरागी हूं, वो इतना बड़ा नहीं है बात। असली बात क्या है, हरिम आश्रयेत। हरि का एकमेव आश्रय ग्रहण करना, हरि पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि हे कृष्णा, अभी तो मैंने आपकी पूर्ण शरणागति स्वीकार की है, आप मुझे मारो या मेरे रक्षा करो, अभी पूर्ण रूपेण मैं आपका गुलाम हूं, आपका सेवक हूं, जैसा व्यवहार मेरे साथ करना चाहते हैं वैसा करो। ये भावना किसी के हृदय में आई तो समझना चाहिए वो व्यक्ति सबसे बड़ा वैरागी है, विरक्त है। और यही वास्तव में उद्देश्य है कि कैसे है हमारे हृदय को इस भावना से रंजित करे, इस भावना को लाए, इस भावना को हमारे हृदय में निवास कराए या बढ़ाए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये कहते हैं। तो हमने समझा कि असली वैराग्य क्या है और झूठा या फल्गु वैराग्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, क्यों हमें वैराग्य की भावना लानी चाहिए? आपको आता है कि नहीं प्रश्न, क्यों लानी चाहिए? हाँ, तो सबसे पहली चीज है, जहां देखी प्रीत हय गौर भगवान, चैतन्य चरितामृत में आता है कि वैराग्य की भावना को देखकर, किसी भक्त के हृदय में वैराग्य की भावना है तो उसे देखकर किसको सबसे अधिक आनंद होता है? चैतन्य महाप्रभु को। किसको? हाँ, इसलिए कहा गया है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, कि वैराग्य की विद्या और अपने भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। तो हमें वैराग्य से कुछ लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वैराग्य हो सकता है लेकिन कृष्ण का सेवक नहीं है तो ऐसा वैराग्य क्या है? विफल है, व्यर्थ है। कोई व्यक्ति मृत शरीर है और उसको बहुत सारे गहनों से आभूषणों से सजाओ, उससे कुछ लाभ है? नहीं है। तो ये वैसे ही है वैराग्य, यदि कृष्ण को प्रसन्न करता है तो वो ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते हैं जब वो अपने भक्तों को देखते हैं कि इनके अंदर वैराग्य की भावना है। हाँ, तो इस कारण से हमें वैराग्य लाना चाहिए, बल्कि भगवान संतुष्ट होते हैं किससे? भक्ति से। किससे? भक्ति से। इसलिए ये जो वैराग्य की भावना है ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि इसलिए मुझे लाना है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं सबसे अधिक। इसलिए भागवतम में वर्णन आया है कि कोई व्यक्ति बहुत सारा धार्मिक कार्य कर रहा है कि मैं बहुत धार्मिक कार्य करता हूं, लेकिन उस धार्मिक कार्य करके उसका फल क्या है? उसके हृदय में वैराग्य का भाव यदि नहीं बढ़ रहा है तो ऐसा धार्मिक कार्य किसी काम का नहीं है। और यदि किसी के अंदर बहुत वैराग्य की भावना आ गई लेकिन वैराग्य की भाव आकर भी यदि वो तीर्थ पद सेवाएं, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है या सेवा करने की भावना नहीं है तो ऐसा वैराग्य भी किसी काम का नहीं है। तो श्रेष्ठ चीज क्या है? यदि कोई कहे कि मैं बहुत माला कर रहा हूं, बहुत भजन कर रहा हूं लेकिन उसके हृदय में भोग करने की भावनाएं बहुत है तो ऐसा उचित नहीं है। उसके हृदय में भी वैराग्य आ गया ठीक है, लेकिन उस वैराग्य का फल क्या है? कृष्ण की सेवा बढ़नी चाहिए उस व्यक्ति के हृदय में। ऐसा भागवत में माता देवहूति अपने पति कर्दम मुनि से कहती है तीसरे स्कंद में। तो इस प्रकार से वर्णन आता है पहली चीज कि हमें वैराग्य का भाव इसलिए लाना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, और दूसरी चीज भगवत गीता में कृष्ण कहते क्यों वैराग्य लाना चाहिए। कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं शुरुआत के श्लोकों में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, ये वैराग्य को दूसरी शब्द है अनासक्ति। असंग मतलब कोई आसक्ति नहीं उस चीज से। तो जब वैराग्य की भावना हृदय में होती है तो इस संसार की जो आसक्ति है उसको हम काटने में सक्षम हो जाते हैं। अटैचमेंट को काटने का जो भावना है हमारे पास आ जाता है। इसलिए वैराग्य को क्या बोला गया है, एक ऐसा शस्त्र है, बहुत धारदार शस्त्र या तीक्ष्ण शस्त्र, आप पहले तलवार, आप कोई व्यक्ति उसी से किसी भी चीज को दो टुकड़े कर सकता है। तो इस संसार में हम आसक्त हैं, कितनी चीजों से आसक्त हैं। एक दिन हम मोबाइल से जीवित रह सकते हैं, एक दिन बिना मोबाइल के। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं, एक दिन मोबाइल नहीं है पास तो सांस बंद हो जाए उसकी, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी स्थिति है। तो इतना आसक्त है व्यक्ति संसारिक वस्तुओं में। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये ऐसी तलवार है, ऐसा शस्त्र है जिसको हम इस भौतिक आसक्ति को काट सकते हैं। और भौतिक आसक्ति क्या है, सबसे पावरफुल दो आसक्ति है जो हमें संसार में बांध के रखती है। सबसे पहले है, प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार के विषयों को भोगने के लिए हमारे हृदय में तीव्र इच्छा, जिससे हम अलग नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल होता है उसको, भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं हम, इन पांच विषयों को भोगना चाहते हैं। और दूसरी चीज है जिसको काटना बहुत कठिन है, वो है कि हम इस संसार पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, स्वामित्व, कंट्रोल करना चाहते हैं किसी चीज को हमेशा। हाँ, तो इस प्रकार से इससे हम इनको काट सकते हैं, दोनों चीजों को। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो वैराग्य की भावना है, जिसके द्वारा हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, अर्जुन ने इतना पावरफुल था, लेकिन अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए, किसके सामने, नहीं मन के सामने, कृष्ण के सामने नहीं टेके। भगवान को कहा कि भगवान मैं तूफान को रोक सकता हूं, हाँ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। बस अर्जुन घुटने टेक दिए, नहीं हो सकता कृष्णा, अभी क्या करूं, चंचल ही मना कृष्ण प्रभाति बलवत दृढ़, ये पागल है, हटीला है, शक्तिशाली है ऐसा मन, जिसको क्या करो, कैसे कंट्रोल करो। तो भगवान उसको दो चीजें बताते हैं, दो चीजें करो, मन आपका गुलाम हो जाएगा। हाँ, कौन सी वो दो चीजें, भगवान कहते हैं अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, दो चीजें भगवान, पहली चीज कहते हैं अभ्यास, अभ्यास करो। क्या अभ्यास, मन को कंट्रोल करने के लिए है। भगवान कहते हैं भक्ति में जो सहायक चीजें हैं, अनुकूल चीजें हैं, उसको स्वीकारते जाओ अधिक से अधिक। जैसे भक्ति में सहायक क्या है, भक्तों का संग करना, प्रसादी खाना, ये कंठी, कंठी का मतलब पता क्या है, कंठ से नीचे कुछ कृष्ण को न अर्पित की हुई चीजें नीचे नहीं जाएगी, ये व्रत ले लिया मैंने अभी, ये शरीर अभी शुद्ध हो जाएगा, हो गया है, कृष्ण का है, कंठिविंस ये कंठ से नीचे और गंदी चीज नहीं जाएगी अंदर। तो भगवान अब कहते हैं कि पहला है कि अनुकूल चीज को स्वीकारो, जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अभ्यास कहते हैं। भक्तों का संग करना, कीर्तन सुनना, भौतिक म्यूजिक नहीं, टेलीविजन हाँ या नहीं, नहीं कैसे मन कंट्रोल होगा, वो टेलीविजन के सामने जो भी बैठता है वो तो जन्म जन्म तक कंट्रोल नहीं कर सकता मन को, वो तो इस संसार में घूमता रहेगा। जैसे चैनल कितने बढ़ गए हैं और उसका मन एक चैनल से दूसरे चैनल पर, जैसे बंदर होता है ना एक टहनी से दूसरे टहनी पर, वैसे मन एक चैनल से दूसरे चैनल पर, तो कैसे स्थिति होगी, कैसे उसका मन कंट्रोल होगा। तो इन चीजों को अनुकूल नहीं, भक्ति में सहायक नहीं है, इनको स्वीकारना नहीं है। और दूसरी चीज वैराग्य का मतलब है जो भक्ति में सहायक नहीं है उन चीजों को त्यागना, दूर रहना उन चीजों से। तो इस प्रकार से या इसी कारण से हमें वैराग्य को स्वीकार करना चाहिए। अभी कोई कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, कुछ होते ना, चलो भगवान कुछ करेंगे। पहले होता है बुद्धिमान व्यक्ति है, समझे शास्त्रों के द्वारा उस वाणी को और शिक्षा को और जीवन में लागू कर दे, इंतजार नहीं करे। कुछ ऐसे होते हैं कि फिर हम यदि स्वयं नहीं करेंगे, भगवान को योजना बनानी पड़ती है। कई बार होता है कि हम नहीं करना चाहते, अगर बच्चा स्कूल में खुशी खुशी से नहीं जाता तो फिर कौन भेजता है थप्पड़ मार के माता पिता, हाँ तो क्या अच्छा है खुशी खुशी से मान जाओ, या फिर क्या करो, क्या करो थप्पड़ खाओ। तो भगवान यदि ऐसी भावना हृदय में नहीं लाएंगे, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति की भावना, तो फिर भगवान हमें फिर पाठ पढ़ाते, ऐसा थप्पड़ अरेंज करते जीवन में, उसके बाद हमेशा के लिए वैराग्य आता है। इसलिए मुझे हमेशा उनकी याद आती है, उज्जैन हम गए थे, वहां के महान राजा थे भर्तृहरि, महाराज भर्तृहरि, उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनकी गुफाओं में गए थे ऐसे ही समझने के लिए कुछ। तो ऐसे भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, मालवा अवंती नाम था उज्जैन का पहले, तो राजा थे, लेकिन प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करते थे, लेकिन उनकी जो छोटी रानी थी जिसका नाम था पिंगला, उससे अत्यधिक प्रेम था उनको, इतना प्रेम कि बाकी कुछ ही नजर नहीं आ रहा था, आंखों के सामने केवल कौन दिखाई दे रहा था, पिंगला पिंगला पिंगला, सोते हुए चलते हुए बोलते हुए, मोबाइल का वर्ड क्या कहते हैं स्क्रीन पेपर भी क्या उसी का ही फोटो, हाँ वॉलपेपर, हाँ कंप्यूटर का भी, तो व्यक्ति पागल हो जाता है, इस संसार में ऐसे ही तो है। तो ऐसे महाराज भर्तृहरि की स्थिति थी, ध्यान में भी बैठे तो पिंगला का ध्यान, कुछ खा रहे सब कुछ में पिंगला पिंगला पिंगला, इतना प्रेम इतना आसक्ति इतना लगाव। तो उस राज्य में एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब, पत्नी के साथ एक खाने का टुकड़ा नहीं था उसके पास एक बार खाने के लिए, उसने सोचा भी क्या मरना ही है, तपस्या कर लेता हूँ, तपस्या के लिए बैठ गया, तपस्या के लिए देवता प्रकट हो गया और उन्होंने कहा, देवता ने फल दे दिया, ऐसा फल देवता ने कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, अमर ही नहीं बल्कि हमेशा युवा रहोगे, युवक बने रहोगे, शक्ति संपन्न होगे। तो उसने सोचा अच्छा ये फल, पत्नी कहती काय का फल है, अभी इतने जीवन हम इतना लंबा समय जीवित रहे हैं, अभी इतने दिनों तक हमें ना खाने के लिए मिला ना कपड़े पहनने के लिए, लोगों से अपमानित हो रहे हैं, ये फल खा के और अमर हो जाओ, खाने को नहीं मिलेगा कपड़े नहीं मिलेंगे, क्या फायदा इस फल का, वो देवता अगर कुछ पैसे लेके चला जाता तो कुछ भला होता हमारा। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा ये राजा को दे दो, राजा सारी प्रजा का पालन करता है, वो अमर हो जाए वो युवा हो जाए सारा जगत का भला हो सकता है। तो गया ब्राह्मण राजा को दे दिया वो फल का, महाराज आप इसको स्वीकार कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जैसे राजा को ये बताया कि अमर होंगे और युवा रहेंगे शक्ति संपन्न होंगे, फल जैसे राजा के हाथ में आया, हाथ में आते ही क्या हुआ होगा, किसका स्मरण, ये फल, ये आसक्ति का यही प्रॉब्लम है, पानी ओथे बहेगा कहते ना, ये अटैचमेंट का प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी चीज आपके पास आए आपका हृदय जिसमें अटका है आप सारी चीजें क्या हो जाएगी उधर ही, सारे फोन कॉल्स उधर ही जाएंगे, सारा धन उधर ही जाएगा, सारी सुविधाएं उधर ही बहेगी, हाँ ये अटैचमेंट का समस्या है। अभी फल आया, इसने सोचा मैं कैसे खाऊं, मेरी पिंगला बूढ़ी हो जाएगी, हाँ पिंगला बूढ़ी हो जाएगी और मैं यो कैसे, मैं नहीं सहन कर सकता, मुझसे ये सहन नहीं हो सकता। तो उसने गया फल लेके गया, उस दिन राजपाट खत्म, फल लेके पहुंच गया पिंगला रानी के महल में और उनको दे दिया बड़ा आदर से और कहा कि ये इसका लाभ है। पिंगला भी बड़े चतुर थे, पिंगला जी ने कहा कि मुझे अभी तो इतना पवित्र फल है तो अच्छा है कि मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन पहले मुझे क्या करने दो, स्नान आदि करने दो, शुद्ध होने दो, पवित्र होने दो, फिर मैं इसको खाती हूँ। राजा तो कह रहा था अभी खा ले, हाँ लेकिन वो उसने जब हाथ में लिया, उसने ये बोला राजा को तो राजा दे, लेकिन उसने भी जब हाथ में लिया तो उसके साथ भी प्रॉब्लम था, वो पानी कहाँ बह रहा था, किसी और जगह, वो एक दरोगा जी थे उससे वो रानी प्रेम करते थे, महाराज को लगा तो ये मुझसे ही प्रेम करती है केवल, लेकिन ये तो दरोगा जो थे वहां घोड़े आदि संभालने के इंचार्ज, उनसे उनको प्रीति हो गई। अभी तुरंत फोन घुमाया राणी ने, किसको? दरोगा जी आ गए क्विकली, तुरंत आ गए और कहा कि देखो ये फल। हाँ, तो जैसे भी माता पिता को कुछ मिलता है सबसे पहले किसको खिलाते हैं? बच्चों को, प्रेम अटैचमेंट वैसे ही है। उसकी जगह कौन होना चाहिए? कृष्ण। जो भी चीज होगी कहां बहेगा पानी? कृष्ण की ओर। तो ये जो रानी है, दरोगा जी आ गए और उनको कहा कि ये फल आपके लिए, इससे आप अमर रहोगे, युवा बने रहोगे, शक्ति संपन्न। अभी उसके भी प्रॉब्लम थी दरोगा जी। हाँ, उसने कहा देखो आप तो इतनी इतना इतना अच्छा फल मुझे दिया है, मुझे तो क्या करना होगा, इतना पवित्र फल है तो मैं गंगा स्नान करके इसको खा लूंगा। कौन सा स्नान? गंगा स्नान, नॉर्मल बात नहीं, गंगा से स्नान। तो वो जाता है, अभी वो तुरंत नहीं खा सकता था, उसके हाथ में भी फल आया तो वो भी कहां बह रहा था? किसी और जगह। और एक उस राज्य में वेश्या थी जिनसे इसको प्रेम था, तो उनके पास गया और उनको कहा ये फल आपके लिए है। अभी उस वेश्या ने जो भी फल लिया वो बहुत बुद्धिमान थे। हाँ, और उसने सोचा कि देखो इस संसार में हर एक व्यक्ति सौरथी है, इवन ये जो दरोगा है ये भी व्यक्ति सौरथी है, ये मुझे फल देकर मेरा उपभोग करना चाहता है, क्या ऐसा निकृष्ट जीवन, घृणित जीवन, ये फल से मुझे कोई लाभ नहीं है, ये फल तो किसके पास जाना चाहिए है? किसके पास? आप सब बहुत बुद्धिमान हो। हाँ, उसने कहा कि ये फल तो अल्टीमेटली राजा के पास जाना चाहिए, और उसको भी एक तरफा प्रीति थी, उस वेश्या को क्या थी, उसको कहते ना वन साइडेड लव वो राजा के प्रति। और वो गई, फिर बहुत बुद्धिमान भी थी, वो गई वो फल लेकर और उनके पास, राजा महाराज महाशय इसको आप स्वीकार कीजिए। हाँ, ये ऐसा ऐसा फल है। अब ये फल कहां से घूम के गया था? उसी से राजा ने जैसे फल को देखा, उसकी गुण उसका लाभ सुना, रंग उड़ गया उसका, फीका पड़ गया। अभी राजा समझ गया, पूरी कथा को समझ गया कि ये फल कहां से कहां आया है। उन्होंने वो पता भी करवाया कि कहां कहां गया। तो फिर उन्होंने, फिर राजा बहुत गुस्से में बोले, राजा कहता है या चिंतयामि सततम् मयि सा विरक्ता, कहते हैं जिनका मैं सतत चिंतन कर रहा था वो मुझसे विरक्त थी, वो किसी और का चिंतन कर रही थी, और वो जिसका चिंतन कर रही थी वो भी उससे विरक्त था, वो किसी और का की चिंतन में थी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरी जो रानी पिंगला है उसका धिक्कार हो, और जो दरोगा है उसका धिक्कार। अब पहले राजा ने 300 श्लोक लिखे हैं। एक्चुअली पहले राजा ने एक शतक लिखा, नीति शतक, हम जैसे चाणक्य नीति है वैसे, बहुत शिक्षा प्रद। फिर पिंगला से इतना प्रेम हो गया, श्रृंगार शतक, पिंगला का सौंदर्य का वर्णन 100 श्लोक। फिर उसके बाद अभी ये जो श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ वो फाइनली सबसे आखिरी में एक शतक लिखा, सौ श्लोक, वैराग्य शतक, वैराग्य से भरे हुए सौ श्लोक। और फिर उन्होंने कहा उस रानी का धिक्कार, दरोगा का धिक्कार, उस वेश्या का धिक्कार, मेरा भी धिक्कार, और ये सारा खेल रचाने वाला जो कामदेव है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्टर पता नहीं किसी ड्रामा का या फिल्म का, वो सब सूत्रधार है, सबको एक सूत्र में बांध देता है, वो काम है। वो कहते हैं ऐसे कामदेव का धिक्कार जिसने हमें क्या कर दिया, धोखा दे दिया, धोखे में रखा इस संसार में। तो राजा उसी क्षण उनके हृदय में वैराग्य आता है। अवंती उज्जैन का राजपाट अपने छोटे भ्राता विक्रमादित्य को देते हैं और निकल पड़ते बाहर। इस प्रकार से हम यदि अपने हृदय में वैराग्य की भावना नहीं लाएंगे भगवान की सेवा में, तो फिर हमारे लिए कौन व्यवस्था करेंगे? कृष्ण जैसे किसके लिए व्यवस्था कर दी? भर्तृहरि के लिए आंखें खोल दिए उसके। तो इस संसार में ये बहुत आवश्यक है कि हमारे हृदय में वैराग्य की भावना लानी चाहिए। लेकिन कई बार कोई व्यक्ति सोचते आ रहे इस पूरे भक्तों के बीच में मैं बड़ा वैरागी हूँ, सबसे अधिक वैरागी। ये वैराग्य भी क्या ला देता है हमारे अंदर? अहंकार। क्या लाता है? इसलिए असली वैराग्य है कि अहंकार को त्याग देना। हाँ, इस संसार में जो झूठा अहंकार है उसको त्यागना ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है। प्रभुपाद के पास एक उनका शिष्य गया नया नया, 1967 में कीप नाम था उसका, बाद में दीक्षित नाम पड़ा कीर्तनानंद। तो वो गया और कहा, प्रभुपाद मैं सब कुछ त्याग कर आना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा, इसको बड़ा अहंकार हो गया है, सब कुछ त्याग कर। प्रभुपाद ने कहा, बेटा तुम्हारे पास है क्या त्यागने के लिए? बड़े त्याग करने की भावना बोल रहे हो। ये जो तुम्हारा शरीर लेके आया हो ना मेरे सामने, ये भी 100 साल के लिए माता पिता से उधार लेके आए हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता हमें देते हैं शरीर, वो भी किराए का है, और वो पता भी नहीं कितने दिन हमारे पास है, 50 साल 60 साल कुछ जन्म लेते हैं शरीर छोड़ देते हैं। प्रभुपाद कहते, बेटा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्या बड़ी वैराग्य की बात करते हो, त्यागने की बात करते हो। और दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं, ये तुम्हारा बुद्धि है बल है वो भी नहीं है तुम्हारा। कृष्ण कहते, बुद्धि बल ये सब मेरा है। और ये जो आत्मा आत्मा करते रहते हो ना, भगवान कहते ये भी मेरा अंश है, तुम्हारा है क्या त्यागने के लिए? प्रभुपाद डांट लगाते। प्रभुपाद कहते, मूर्ख त्यागना है तो इस चीज को त्यागो कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। ये जो अहंकार है ना उसको त्याग दो। इस संसार में छोटा अहंकार छोटे छोटे चीजों से व्यक्ति के हृदय में होता है, जिसको त्याग करना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये जो झूठा वैराग्य है, कुंती महारानी इसलिए कहती है कि ये चार चीजें हमारे अंदर अहंकार लाती हैं। एक है जन्म, कोई बड़े धनवान परिवार में या ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वो जनेऊ होता है ना, धागा 2 रुपए का धागा इसे बाहर निकाल के चलता है। चतुर्वेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, आप में से तो कोई नहीं ना, गलती से बोल रहा हूँ। तो ऐसे हाँ बड़ा अहंकार होता है। किसी को पूछा, कोई कहता है मेरा कुल बड़ा श्रेष्ठ है क्योंकि मेरा जन्म हुआ है ना उस कुल में। किसी ने कहा, अरे एक व्यक्ति ने बोला मेरा भारत महान है, दूसरे ने पूछा तेरा भारत क्यों महान है बोलो बताओ, कहता है क्योंकि मेरे भारत में मेरा जन्म हुआ है इसी कारण से मेरा भारत क्या है महान है। तो ऐसे ऐसे अहंकार है जन्म के। हाँ, जन्म से अहंकार आता है। दूसरा कुंती महारानी कहते, जन्म ऐश्वर्य धन, धन या बड़ी सुविधाएं होती हैं जिसके कारण हम फूलते हैं टमाटर की तरह। हाँ, जन्म ऐश्वर्य। और तीसरी चीज कुंती कहती है श्रुतः, श्रुतः मीन्स ज्ञान, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, इतनी भाषाएं जानता हूं, इतनी स्किल्स मेरे पास है, जिसके कारण घमंड हो जाता है, गर्वित हो जाता है। और चौथी चीज है श्रुतः, श्री, श्री मीन्स सौंदर्य, सुंदरता पे भी अभिमान होता है। इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है, इस संसार में ये चार चीजों का जो अभिमान है, गर्व है, घमंड है, जिसके कारण व्यक्ति फूलता है और यही उसका उसकी अयोग्यता है भगवान का भजन न करने की, ये डिस्क्वालिफाई हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। इसलिए कुंती महारानी कहती है भागवत में, ये दान मद कुमान, कि ये जो चार चीजों का घमंड है वो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे आग में घी डालो बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से ये बढ़ता है, जिसके कारण व्यक्ति हरि की शरण नहीं ग्रहण करता। हरि तो किसके है? त्वाम अकिंचन गोचरः, हरि तो उनकी संपत्ति है जिनके पास भौतिक संपत्ति नहीं है। मतलब सब चीजें होते हुए भी व्यक्ति उनसे आसक्त नहीं है, भौतिक चीजों से वो वास्तव में वो हरि उनकी संपत्ति है। इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है कि ये अहंकार को त्यागना ही बहुत बड़ा वैराग्य है। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन व्यक्ति के धन है भगवान। हाँ, इसलिए सबसे वैराग्य, सबसे बड़ा वैराग्य क्या है ये जानना हो तो सबसे बड़ा वैराग्य का एक श्लोक है, उसको हमें यहाँ बांधना होगा। कहाँ बांधना होगा? यहाँ भागवत एक ग्रंथ में वर्णन आता है। वो श्लोक कौन सा है? त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक दिए हमें। महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, चैतन्य महाप्रभु ने कोई शिक्षा नहीं दी बड़ी, केवल 8 श्लोक बोल के वो गए। और वो सारे शास्त्र जो है, वेद उपनिषद आदि सबका सार उन 8 श्लोकों में है, उसी में से ये एक श्लोक है। हाँ, ये सबसे बड़ा वैराग्य का श्लोक है। क्या है ये श्लोक? त्रिणादपि सुनिचेन, घास के तिनके के समान व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। हाँ, इसलिए विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हाँ, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, और इस जगत में हमें वृक्ष के समान क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। और अमानिना मान देना, मतलब हमें कभी भी मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, और सदैव दूसरों को मान या सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी भयभीत रहता है इस संसार में। माने दैन्य भयम, जिसको हमेशा मान लेने की आदत है वो भयभीत रहता है, अपमान ना हो जाए, दीनता ना आ जाए मेरे जीवन में। हाँ, तो इसलिए इस संसार में चाहे आप जो मर्जी हो, हाँ, हमें क्या होना चाहिए? कभी भी इस संसार का ये झूठा मान सम्मान आदि है उसको प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, और निरंतर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था? वैराग्य क्या है? दूसरा प्रश्न था कैसे, क्यों वैराग्य लाना चाहिए? और तीसरा प्रश्न का उत्तर देके मैं यहाँ विराम करता हूँ थोड़ी देर में, आप सबको बहुत लेट हो रहे हो आप। तीसरा प्रश्न है वैराग्य कैसे, वैराग्य की भावना हमारे हृदय में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से जो मर्जी प्रयास करो, वैराग्य का भावना नहीं आ सकता और वो टिक नहीं सकता। बहुत बहुत वैराग्य की भाषा, वैराग्य के वचन बोलने से भी वैराग्य आने वाला नहीं है और वो टिकने वाला भी नहीं है। या सर को मुंडन करने से हफ्ते में एक बार तो भी वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य के कपड़े पहनने से भी वैराग्य आएगा नहीं। हाँ, जितनी कोशिश करोगे उसमें निश्चित रूप से फेल हो ही जाओगे, इसलिए ये वैराग्य स्वाभाविक रूप से आएगा और उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। और वो स्वाभाविक रूप से आने वाला जो वैराग्य की भावना है वो हमारे हृदय में बनी रहती है, क्योंकि इस संसार में हम सब लोग किसी ना किसी प्रकार के भौतिक रस को भोगने के लिए लालायित है सदैव। हम रस में इस संसार में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है जिसको हम हमेशा अपने जीवन में भोगना चाहते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में जो सबसे बड़े वैरागी भक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, परंपरा देखिए ना अपने मंदिर में, हम यहाँ भी होगी शायद, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति, गौर किशोरदास बाबा जी प्रभुपाद। और उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी। उनका वर्णन आता है, उनका प्रणाम मंत्र है जिसमें कहा गया है नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। तो वहां शब्द आया है रसाम्बोधे। तो वैराग्य क्यों है उनके पास इतना टॉप मोस्ट? क्योंकि वो भगवत भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन कर रहे थे। तो इस संसार का भी रस हम भोग रहे हैं। इस संसार में 5 इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं? एक विशेष रस को भोग रहे हैं, जिसके कारण इस संसार के रस भोग को त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं रसवर्जन रसोपेश परम दृष्टवा निवर्तते। भौतिक रस की भोगने की इच्छा जब तक रहेगी तब तक उन्नत रस अच्छा नहीं लगेगा, और जब उन्नत भगवत भक्ति का रस अधिक हम आस्वादन करेंगे तो संसारिक जो भोग है इंद्रियों के द्वारा जो हम भोगते वो ऐसे तुच्छ लगेगा जिस पर हम थुकेंगे, हाँ ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक हाँ जो रस है भगवत भक्ति का उसको चखना, उसमें लगना। हाँ इसलिए जो गोस्वामियों का बात हम करते हैं, छह गोस्वामी वृंदावन के छह गोस्वामी, उनका भी वर्णन आता है गोपी भाव रसामृतार्थ लहरी। हाँ वो एक जो छह गोस्वामी हुए हैं हमारे संप्रदाय में वो सारे अरब अरब पति थे, कोई बंगाल का वित्त मंत्री है तो कोई राजकुमार है तो कोई कुछ है, इन सबने संसारिक सुखों को त्यागा, तिनके को जैसे त्यागते हैं मल को जैसे त्यागते हैं, क्यों? क्योंकि गोपी भाव रसामृता दिलहरी कल्लोल मग्न मोह, गोपियों की भावना जो कृष्ण की सेवा के लिए है उस रस में वो शाम करते थे प्रतिदिन, ऐसा आकर्षण था भगवान की सेवा के प्रति भगवत भक्ति के प्रति। हाँ तो वो तब जब आएगा भगवत भक्ति का भावना तो वास्तव में हम उन्नत रस को हम समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। यदि हम तीन चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में वैराग्य का भाव जागृत हो सकता है। और वो पहली चीज क्या है, तीन चीजें वास्तव में रसा है, रस मीन्स आजकल गर्मी आ गई ना तो सब आम रस पी रहे हैं, कुछ कुछ रस पी रहे हैं, तो तीन रस हम पिएंगे अपने जीवन में प्रतिदिन तो हम चाहे किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कोई भी प्रोफेशन हो जहां मर्जी रह रहे हो तो हृदय में वैराग्य का भाव आएगा और भगवान के लिए सॉलिड प्रेम सॉलिड अट्रैक्शन हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु भौतिक आकर्षण नहीं रोक सकता। वो तीन चीजें क्या है तो ध्यान से आप याद रखिए, पहला है नामामृत। क्या है? तीनों अमृत है। पहला क्या है? नामामृत। इसलिए रूप गोस्वामी कहते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का वो विग्रह है। हाँ तो मैं तो बहुत संक्षिप्त में तो बोल रहा हूं, तो पहला है नामामृत हरे कृष्णा, जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ तो पहला है नामामृत, उसके हजारों उदाहरण आते कैसे नाम लेना चाहिए, कैसे कौन कौन ऐसे भक्त थे जिन्होंने इसको चकहरीदास ठाकुर कोला बेचर श्रीधर कितने ऐसे उदाहरण है हम शास्त्रों में, नारद मुनि है अपने अपने नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है, नारद मुनि बिना बजाते हुए कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते, हाँ नारद मुनि क्या करते बिना बजाकर राधिका रमन के नामों का गान करते हैं और आस्वादन करते हैं नाम रस का। और दूसरा है भागवत अमृत का पान, भागवत मीन्स श्रीमद् भागवतम को सुनना भागवतम को पढ़ना। इसलिए सारे संसारिक ग्रंथ सबको जला दो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेद उपनिषद सब निम्न कोटि के हैं, संसारिक लिटरेचर तो वैसे ही कूड़े करकट है जिसमें कौवे के जैसे भावना के लोग उस पर मंडराते रहते हैं। इसलिए है व्यास देव ने सारे ग्रंथ के आखिरी में सर्वोत्तम इसकी रचना की है भगवान के आदेश पर तो भागवतम है। भागवतम के अलावा किसी और को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, गीता भागवत हाँ करीति श्रवण, तो भगवत कथा को सुनना भगवत चर्चा को सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज है भक्ति रसामृत का पान करना, कौन सा रसामृत? भक्ति रसामृत। तीन चीजें हरि नामामृत भागवत अमृत भक्ति रसामृत। भक्ति रसामृत मीन्स भगवान की प्रेममयी सेवा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए अपने मन शरीर और वाणी के माध्यम से। हाँ क्योंकि भगवान का भक्त जब भगवत सेवा का पान करता है तो किसी चीज की अपेक्षा उसे नहीं होती, वो भगवान मुक्ति देने के लिए तैयार है। भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है भगवान के जो भक्त मुक्ति को भी नहीं स्वीकारते,
केवल सेवा चाहिए। इसलिए हनुमान इतने, हनुमान तो ऐसा डिवोटी नहीं है। हनुमान को देखो, भगवान राम यहाँ कितनी सेवा कर रहे हैं। भगवान राम जब धूप में होते थे तो छाता चाहिए भगवान को, तो अपनी ये जो पूंछ है उसको ऊपर करते थे और उसको ऐसे पकड़ते थे छत्ते के समान, है ना, पूंछ का जो बाल। और जब भगवान को गर्मी हो जाती थी तो वो अपना पूंछ को क्या करते थे, चामर ऐसे हिलाते रहते थे, उससे हवा आती थी। और फिर भगवान को कल घूमने जाना है, कुछ जाना है, तो उनके कंधे हमेशा तैयार है। तो हनुमान जैसा सेवक नहीं है, भगवान तो चकित हो गए, क्या डिवोशन है, क्या सर्विस की भावना है। तो ये सेवामृत है, भक्ति रसामृत का मतलब है सेवा। तो भगवान एक दिन कहते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ, लिबरेशन। कहते भगवान वो रोने लगे, कहते मुक्ति क्या करूं, मैं उसमें सेवा नहीं है ना आपकी। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सेवा चाहिए। तो भगवान इतने व्याकुल हो गए राम, अरे ऐसी भावना भक्त के जो सेवा के अलावा कुछ नहीं मांगता, भगवान उससे बंध जाते हैं। वो यशोदा ने भी साक्षात रस्सी से बांधा, लेकिन इन भक्तों ने कैसे प्रेम की रस्सी से बांधा, जो रस्सी दिख नहीं रही थी। तो ऐसे हनुमान जी भी हाँ क्या करते हैं, भगवान राम से उससे क्या करो, तो भगवान राम उनको आलिंगन देते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आलिंगन के अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम तीन चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति, इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना और भगवान के प्रति हृदय में प्रेम और दिव्य सेवा की भावना हमारे हृदय में जागृत हो सकती है और स्थिर हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद जी।